श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परन्तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मैं अभी थोड़ा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से बोलूंगा, छोटा सा कमेंट है, उसके बाद हम प्रभुपाद के तात्पर्य की चर्चा करेंगे। तो वे कह रहे हैं कि कोई प्रश्न उठा सकता है कि भाई जब ये धर्म ये भक्ति का संपादन करना इतना आसान है तो भौतिक जगत में रहेगा कौन। तो ये प्रश्न ये श्लोक है जो इस प्रश्न का उत्तर है। और ये है कि जो लोग भक्ति के बारे में सुन करके भी, भक्ति की महिमा सुन करके, श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठता शास्त्रों से सुन करके भी ये सोचते हैं, पहले तो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते एक बात, दूसरा ये सोचते हैं कि ये सब तो बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है और इस कारण से वो भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अन्य कितने भी साधनों का खूब कष्ट करके साधन करें। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी इस उदाहरण को देते हैं कि कोई व्यक्ति चावल की थूस तूस 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 का अर्थ है चावल का छिलका, उसको खूब जम के कूटे कि इस आशा में कि हमें चावल मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। स्थूल तुषाव घाति नाम। तो इसी प्रकार से व्यक्ति भक्ति के पथ पर श्रद्धा ना रख करके और अन्य पथों का वो अनुसरण करे अनुगमन करे तो वो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, श्रद्धावान के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तद दोषणादापि अशु आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। भक्तों के संग में आकर जब हमारी कथा को सुनते हैं तो भगवान में श्रद्धा होती है, उनमें रति होती है और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभागे हैं कि भक्तों के मुख से सुनने के बावजूद भी इस प्रकार से भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, डाउट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। काफी इंटरेस्टिंग है, लखा हीरा नाम की जो वैश्या थी जो शिला हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए आई थी, तो हरिदास ठाकुर ने जब उसका उद्धार किया और उसने बोला मैं कैसे भगवान के चरणों की प्राप्ति करूं, तो बोले निरंतर लव कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम लगातार कृष्ण का नाम लो और तुलसी महारानी की सेवा करो, तुलसी जी की सेवा करो, तो तुम्हें जो है जल्दी ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। और उन्होंने ऐसा किया, अपने गुरु की बात को माना और उनको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हुई। तो ये दिखाता है कि श्रद्धा से गुरुजनों के मुख से सुन करके अगर व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति करता रहे तो निश्चित रूप से उसे भगवान की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है यथा तरोर्मूल निशेश्च नेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाख प्राणोपहाराच्छ यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। कार्य सारे छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति घर तुरंत छोड़ दे, लेकिन उन सभी घर के कार्य को करने का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की सेवा को पुष्ट करने के लिए ही होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। और जिन कार्यों से भगवान की भक्ति में या भगवान की सेवा में विघ्न आए तो उन्हें त्याग देना चाहिए, ये श्रद्धा का लक्षण है। अर्थात कृष्ण की सेवा के द्वारा ही मेरा जीवन की परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी और कोई उपाय नहीं है, कृष्ण ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, ये भावना श्रद्धा का सूचक है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है, अर्थात नहीं भी हो प्रारंभ में श्रद्धा तो उसका विकास एक विधि के द्वारा किया जा सकता है। और ये ध्यान देना चाहिए कि श्रद्धा हृदय में है लेकिन इसका खाली विकास करना है, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा बाहर से ट्रांसप्लांट की जाएगी। एक दृष्टि से श्रद्धा है, जैसे कि बीज होता है तो उसमें पानी दिया जाता है बाहर से, लेकिन बीज में ही सारी एक पेड़ छुपा रहता है, आप समझते हैं इस बात को। ऐसे ही भगवत प्रेम हमारे हृदय में है जिसकी प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा कहलाती है, और जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं भगवान के बारे में तो अपने आप ही श्रद्धा विकसित होती है, भगवत प्रेम के रूप में परिणत हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं, तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लोग भक्ति में आते हैं लेकिन भक्ति में रह नहीं पाते, और उसका कारण यही है कि उनको लगता नहीं कि इससे वाकई मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। तो अभागे ही लोग हैं इस प्रकार के लोग। देखिए भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा को सुधर जाती है तो वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसी उद्देश्य को पाली रहेगा तो श्रद्धा का विकास नहीं होगा, जो कि मुख्य कारण है भक्ति में प्रगति करने का। प्रभुपाद जी अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपना एक एजेंडा बनाए रखेगा, अल्टीरियर मोटिवेशन रखा रहेगा, तो भक्ति के तत्व को, कृष्ण भावना की फिलॉसफी को, सिद्धांत को समझ ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे नहीं, बुद्धि तो सबके पास होती है, कैसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भगवान समझने नहीं देंगे अंदर से। तो इसलिए आवश्यक है कि अच्छे भक्तों के संग रह करके उनकी संगति में ठीक से भक्ति करें, ठीक से सिद्धांत सीखें और कपट ना रखें। अगर कपट रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा फिलॉसफी को समझना, सिद्धांत को समझना। कृष्ण भावना में मृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है, अर्थात भौतिक योग्यता कोई भी योग्यता नहीं है प्रगति करने के लिए, विश्वास ही प्रगति का एकमात्र कसौटी है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना मृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। आपने एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि देखिए केवल साहित्य में नैपुण्य ही भक्ति का कोटि में वृद्धि नहीं कहलाएगी। भक्ति में अगर उच्च स्तर पे है व्यक्ति तो उसे शास्त्र ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ साथ शास्त्रों पे विश्वास होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को ज्ञान हो और विश्वास नहीं हो, जैसे एक नाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्लोक तो कोट कर सकते हैं लेकिन विश्वास कितना है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति साधना अच्छे से करके भक्ति में प्रगति किया है, शास्त्रों को समझता है और साथ साथ वो विश्वास भी रखता है शास्त्रों में, तो ऐसा व्यक्ति प्रथम कोटि का है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो भक्तों से सुनते हैं और पूर्व जन्म की भी स्वीकृति रहती है, तो इस कारण से भक्ति में सहज श्रद्धा होती है लेकिन भक्ति शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। सरलता का अर्थ है फिर भक्तों के संग में थोड़ा बहुत सुन लिए लेकिन भक्ति के शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ज्ञान करना भी नहीं चाहते, वो पढ़ना भी नहीं चाहते, तो ऐसे लोग तृतीय कोटि में जाते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो लोग कुछ कुछ बता देंगे, नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, कोई और भगवान है, निराकार है, ऐसा वैसा, तो काफी संभावना है कि वो भ्रमित हो जाए। किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते क्योंकि उनका विश्वास स्ट्रांग है। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जब कुछ उनको कोई बोलेगा तो वो जानते हैं कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं और ये व्यक्ति मूर्ख है और शास्त्र में उनको श्रद्धा रहती है तो उनको तो गुमराह होने का प्रश्न नहीं है। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा स्ट्रांग है तो भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे श्रद्धा के संग विश्वास के संग तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें एक मुख्य अंग हम ये भी देख रहे हैं कि श्रद्धा का कारण बार बार शास्त्रों का अभ्यास है। जब हम शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं, भक्तों के संग सुनते हैं तो श्रद्धा अपने आप शास्त्रों पर होने लगती है और अपने इंद्रियों के छोटे से अनुभव पर विश्वास करना हम बंद कर देते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। इस चीज को आचार्य ने भी समझाया था कि भक्ति की महिमा सुनने के बावजूद भी श्रद्धा ना होने के कारण लोग भक्ति छोड़कर दूसरे पथों का अनुगमन करने लगते हैं तो इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने में बाधा आ जाती है। किंतु जो ही उन्हें ज्ञान तथा कर्मयोग उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं और ये सब भक्तों के संग से और साधना से होता है। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका इनका वर्णन है। भागवत की 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है और श्रद्धा मिलती है उन लोगों से सुनने से जिनके हृदय में श्रद्धा है। जब हम किसी साधु के मुख से सुनते हैं तो उनकी चेतना उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होती है और उनकी श्रद्धा जो उनके हृदय में है वो हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। हम सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं क्योंकि हमने भक्तों के मुख से श्रील प्रभुपाद के मुख से उनकी पुस्तकों से सुना है। तो इसलिए साधु संग करने का अर्थ है उनसे सुनना और उनके द्वारा जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपहार है और जो है भगवान के चरणों में दृढ़ श्रद्धा उसको प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति श्रद्धापूर्वक करके। हरे कृष्णा।